सभी को शांति की बधाई। नए साल पे ये बहुत ही अच्छी बात है, हम नया दृष्टिकोण लेकर चलें। तो इन डिटेल्स यानी कि जो इसकी फॉलोअप रिट्रीट होगी उसकी डिटेल्स आपको अंत में दी जाएगी। तो ये कोट आ रहा है, ये उद्धरण आ रहा है जॉन मिल्टन से, जो कहते हैं वह जो अपने भीतर शासन करता है और उसको जुनून इच्छाओं और भय पर शासन है वह राजा से भी बढ़कर है। यानी जो अपने मन को शासन कर सकता है वो राजा से बढ़कर है। और दूसरा कोट जो आ रहा है बहुत ही दिलचस्प कोट है, ये पीटर ड्रूकर का ये कोट है और वे कहते हैं कि अशांति के समय में सबसे बड़ा खतरा अशांति नहीं है, लेकिन ये कल के तर्क के साथ कार्य करना है। यानी कल के तर्क के साथ, कल के लॉजिक के साथ हम आज की मुसीबत का सामना कर रहे हैं तो ये हमें तकलीफ देता है, तो सोचने की बात है। तो जो दर्द है वो एक पनिशमेंट नहीं है, वो एक सिग्नल है कि हमें परिवर्तन करना है, हमारे को अपनी चेतना को बदलना है, इसका ये मतलब है। तो सेराबेन अपना कुछ उदाहरण बता रही हैं। तो वो अलग जगह रही, अलग कॉन्टिनेंट में, अलग भाषा के लोगों के साथ, लेकिन उनके मन में उसी प्रकार के संकल्प चलते थे उन लोगों के प्रति या फिर उन चीजों के प्रति या परिस्थितियों के प्रति। तो उनको लगा कि उनके खुद के भीतर में कुछ परिवर्तन होना है, बाहर की चीजों में नहीं। तो हम अभी ब्रदर प्रशांत से मिलते हैं और वो हेलो कर रहे हैं सभी को और गुड मॉर्निंग सभी को। और ये उद्धरण जो आए, जो कोट्स आए वो बहुत ही खूबसूरत थे। तो कल तक कुछ चीजें हमारे साथ काम करती थी, लेकिन आज हमें कुछ नई अंडरस्टैंडिंग मिली है, समझ मिली है। तो आज हम एक, अब से हम नया खेल खेलने वाले हैं, एक नई दिशा की ओर और एक नई तकदीर की ओर। अब तक हमने जो समझा है तो हमने देखा सीता क्वीन थी, रानी थी, और अब वो दासी है रावण की, जो सबसे बड़ा असुर है, 10 सर का मॉन्स्टर है, यानी राक्षस है। तो हमें भी ये बात समझनी है कि परिवर्तन होता है जब हम वो पहला कदम उठाते हैं, और वो पहला कदम है सोल कॉन्शियस होना। तो हम ये कुछ कदम उठाते हैं सारे दिन भर। तो इस क्षण वो अदृश्य खिलाड़ी जो अदृश्य सोल है, आत्मा है, वो समझता है कि वो बहुत बहुत लकी है। और वो क्यों लकी है? क्योंकि वो अपनी अदृश्य दुनिया के लिए वो लकी है और वो उसको जानता है, इसलिए वो लकी है। कहानी की वजह से हम लक नहीं कह रहे हैं, हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं अलौकिक। वो अलौकिक फैमिली का है, वो जानता है कि उसकी दुनिया बहुत ही मंगलमय है, रावण फ्री दुनिया है, बिल्कुल साफ स्वच्छ है, जहां कुछ भी अशुभ नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। और ये जो आयाम है, डायमेंशन है, वो हर क्षति से परे है और उनको, उनके अस्तित्व के लिए कोई भी चीज दुनिया की जरूरत नहीं है, यानी कि स्थूल दुनिया की। कोई भी वहां प्रकंपन नहीं है दुखदाई या पीड़ित मानसिकता के। जब कोई इच्छा नहीं होती और निराशा नहीं होती है, तो जो हम अनुभव करते हैं वो है एक साइलेंट खुशी। हर कोई लवली लगता है और प्यारा लगता है। अगर कोई इच्छा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई अहंकार नहीं है और कोई विकार नहीं है, तो लवली हो जाते हैं। और भोले होते हैं, यानी बच्चे के समान भोलापन, केयर फ्री होते हैं और क्षति से परे होते हैं, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम अहिंसा। ऐसा है ये आयाम। हम किसी फ्यूचर स्वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये समय से परे की सच्चाई अभी भी हम अनुभव कर सकते हैं। अदृश्य खिलाड़ी, अदृश्य एक्टर है, अदृश्य प्रेक्षक भी है, ऑब्जर्वर। वो स्टोरी को जानता है और उसे साइलेंटली देखता है। वो एक्टर भी है, लेकिन लाइन क्रॉस नहीं करता है, यानी कि वो किसी भी इग्नोरेंस यानी अज्ञानता में नहीं जाता है। कहानी है, लेकिन वो अपनी रियलिटी में है, फिक्शनल रियलिटी में है। उसकी दुनिया संपूर्ण है, उसकी अलौकिक दुनिया बिल्कुल कंप्लीट है, फुल है। और केवल खुद को जागृत रखकर वो दूसरों के लिए आसान बना देता है जागृत होना। और रावण के इस जाल से वो सभी बाहर निकल पाते हैं उसके एक खुद की चेतना जागृत होने से। वे बिल्कुल क्षति से परे हैं। तो जैसे हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं, हम जागृत रहते हैं, यानी अदृश्य यात्री जागृत रहते हैं, चाहे घर पर हो, चाहे अपने खेल के मैदान पर। धन्यवाद। आप अगर कोई कमेंट्स और सवाल हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन हम छोटा सा एक फटाफट हम रिकैप्चुलेशन करेंगे, यानी कल तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार समझेंगे। ये व्हाइट बोर्ड आप सामने देख रहे हैं और आपने ये स्केचेस जरूर ड्रॉ किए होंगे, ये रिमाइंडर्स के लिए, याद दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। हम ये कहना चाहते हैं कि स्टोरी जो है वही एकमात्र दुनिया नहीं है, हमारे पास पारस बुद्धि की जरूरत है, उस दृष्टिकोण की जरूरत है और हम जो हैं ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं यहाँ पर। तो ये एक स्केच है जिसे हम याद रखते हैं। कल हमने देखा कैसे हम देहभान यानी देह का अहंकार क्रिएट करते हैं अपने भीतर, और इन ईगोस के साथ आता है विनाश फोर्स यानी विनाश बल। तो हमने देखा कि ये आत्मा की जो यात्रा है वो कंटिन्यू करती है, तो जो मेमोरीज हैं हम वो याद रख पाए ना रख पाए, लेकिन ये जो बहुत गहरा संस्कार जो पड़ा होता है आत्मा में वो आज से कल तक जाता है, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म तक। और ये केवल हमारे द्वारा ही हटाया जा सकता है, और इसे हटाया जा सकता है जब हम ये आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे ये देह अभिमान और विनाश बल हटता जाता है वैसे वो रिमूव होता जाता है। जो पत्थर बुद्धि है वो देह अभिमान को फेवर करती है, और ये आत्मा अभिमानी स्थिति बहुत छोटी हो जाती है, सोल कॉन्शियसनेस छोटा हो जाता है। तो जैसे कोई देह को छोड़ता है, ये जो संस्कार है एक जन्म से दूसरे में जाता है, वो विनाश बल भी जाता है, वो कई बार बच्चे के साथ, वो हैंडीकैप के साथ वो जन्म लेता है वो बच्चा, क्योंकि विनाश बल साथ होता है। तो कोई कहेगा कि इतने छोटे बच्चे को ऐसा क्यों हुआ, बट वो जो यात्री है वो उसकी यात्रा पीछे से चल रही है। अच्छा या बुरा दोनों वो कैरी करता है। तो अगर किसी ने रावण पर जीत पहनी है तो उसके लिए प्राइज भी है, और अगर आप हारते हैं तो उसके लिए सजाएं भी हैं, और ये सजाएं कभी भी आ सकती हैं, चाहे वो बचपने में आए, चाहे बड़प्पन बड़े होने के बाद आए। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनको मदद करें ये गेम जीतने में, और वो तभी जीतेंगे जब आप जागृत रहेंगे। तो हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल या कमेंट हो तो आप दे सकते हैं। किसी ने पूछा है कि कार्मिक अकाउंट और विनाश बल क्या एक ही बात है, तो जवाब है हाँ। तो अगर ये खेल है और हम खिलाड़ी हैं, तो ड्रामा को कौन चलाता है? अगर हम गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, ये विनाश बल वो ड्रामा में एक्ट करते हैं, तो ड्रामा को कौन चलाता है, ये सवाल है। आप समझ गए होंगे। तो जवाब है कि जैसे ग्रेविटेशनल लॉ होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई उसको चला रहा हो, वो है बस, केवल उसका एग्जिस्टेंस है, ये नेचुरल है। कुछ लॉज होते हैं थर्मोडायनामिक्स के, और ये सब कानून है, नियम है दुनिया के। इसमें भगवान की जरूरत नहीं है विनाश फोर्स को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप ही चलते हैं। तो हमें भगवान की जरूरत नहीं है कि वो 800 करोड़ आत्माओं का कार्मिक अकाउंट क्लियर करें, लेकिन ये विनाश बल वगैरह इस ड्रामा की स्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली नूंधे हुए हैं। तो ये अपने आप कार्य करते हैं। एक और सवाल है कि आत्मा की पावर और देह अभिमान, देह अहंकार की शक्ति को कैसे हम अलग से देख सकते हैं? तो देह अभिमान जो है वो केवल कहानी को देख सकता है, और ये देह अभिमान की जीवन उस बॉक्स के अंदर है। पर जब हम आत्मा को बीच में लेकर आते हैं तो वो बड़ा नक्शा दिखती है। और वो परे की दुनिया देख सकती है। तो जो बड़ा डिफरेंस है वो है अंधकार और प्रकाश। ईगो जो है उसको डार्कनेस नजर आता है और आत्मा को जो है लाइट का प्रकाश ही नजर आता है, यानी जो सत्य है वो नजर आता है। तो देह अभिमान जो है उसको पहले हमें रियलाइज करना होता है, तभी हो जाता है। अगर रियलाइज नहीं होता तो वो नहीं जाता है। आप कैसे किसी को समझा सकते हैं अगर कोई हैंडीकैप हो या फिजिकल डिसेबल? आप स्टोरी कैसे समझा सकते हैं, ये प्रश्न है। माफी चाहते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कनेक्शन टूट गया था। तो अगर किसी के पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, यानी शारीरिक तौर पे कोई डिसेबिलिटी हो, तो कई बार वे लोग ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं दूसरों से। तो नेचर जो है कंपेंसेट कर देती है उनको, यानी प्रकृति कंपेंसेट कर देती है। जब हम रावण के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर रावण को हटाना है तो पहले उसे रोकना होगा। तो हमें जरा भी उसको चांस नहीं देना है। अगर थोड़ा भी आप उसे चांस देंगे तो आप उसे जिंदा रखते हैं, जैसे कोई राक्षस होता है। तो वो आपको परेशान करेगा। तो आपका ये जो सफलता है वो है आप जरा भी रावण को शह ना दें। तो हम आज के सब्जेक्ट पे आते हैं। आज का विषय है, आप गेस कर सकते हैं, भगवान। हमने अब तक सत्य की बात की है, ट्रू सेल्फ की बात की है, और हम सोल की जर्नी हमने देखी अभी तक, और हमने जो नियम है उनको भी देखा कि क्या चीज हमें लकी बनाती है, क्या अनलकी बनाती है। ये साइको ड्रामा भी हमने देखा राम सीता का, और कैसे इस खेल को जीतना है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो लोग खुश हैं बुक्स लिखने के लिए भी। तो कैसे हम पता करें कि इस दुनिया में भगवान है नहीं है? तो एक शब्द जिससे हम शुरू कर सकते हैं वो है भगवान को जानने के लिए, और वो शब्द है सत्य। जो भी भगवान है तो वो सत्य में तो जरूर रहेंगे। अगर किसी को सत्य नहीं पता है तो हम ये नहीं कह सकते वो भगवान है। तो जो रूट्स हैं वो सब
can't know truth. And that the method.
तो ब्रदर प्रशांत पारस बुद्धि की बात कर रहे थे, जो आपने चैट जो आपने मिस किया है इंटरप्रिटेशन में, हम बता देते हैं कि पारस बुद्धि की बात कर रहे हैं। जो पारस बुद्धि वाला है उसको सत्य दिखाई देता है, उसको सफाई से दिखाई देता है अपनी दुनिया, और उसको दिखाई देती है स्टोरी की दुनिया, वो भी दिखाई देती है। तो उसको शून्य दुख होता है, शून्य निराशा होती है। और अगर शून्य सौरव है तो शून्य विकार भी है, यानी कोई विकार नहीं है। रावण शून्य हो जाता है और अहंकार भी शून्य। तो हम बात कर रहे हैं जो निरहंकारी है, निराकारी है, निर्विकारी है, तो हम उस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो भगवान का नाम है पारस नाथ, यानी वो हमेशा पारस में रहते हैं, तो वो ये सब कुछ अनुभव करते हैं। और जो अंततः फीलिंग आती है वो आती है आनंद की और शांति की। तो भगवान यानी जो सत्य में रहते हैं, और सत्य में रहना यानी पारस बुद्धि से देखना, जो हमेशा पारस बुद्धि में होते हैं और वो ये सब अनुभव करते हैं। तो आप देखिए, इस दुनिया में भी किसी के पास थोड़ा कम अहंकार होता है, जैसे महात्मा लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं इतिहास में, जिन जिन के पास जीरो ईगो था, कम विकार, कम इच्छाएं थी, हम उनको संत बुलाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में जो हमारा घर है उसमें सब निर्विकारी हैं, निरहंकारी हैं। तो वो नेचुरली फील करता है तो वो नेचुरली प्रेम का अनुभव करता है। और अगर कोई इच्छा नहीं है ये, तो फिर संतुष्टता होती है उसके जीवन में। और उसे समझ आता है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है सकारात्मक है, आसमान भी ग्रेट है और सर्कस भी ग्रेट है, यानी ये ड्रामा भी ग्रेट है, ये सब कुछ वो पॉजिटिव समझता है और कल्याणकारी समझता है। तो हम इस वक्त भगवान की बात कर रहे हैं, तो वो 100% मुक्त हैं विष की बूंद से भी। तो जो सही शब्द इस्तेमाल करेंगे हम, वो शब्द है ओशन, यानी सागर। अगर आप काव्य रूप में इस्तेमाल करें तो शब्द है सागर। भगवान को हम सागर बुलाते हैं, प्रेम का सागर, शांति का सागर। तो वो महसूसता उनके पास सागर की होती है, क्योंकि कोई रावण नहीं है, कोई अंधकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है। तो वो अलौकिक रियलिटी, सच्चाई बहुत ही स्वाभाविक है। कोई भी अगर उस संपूर्ण सत्य में हो तो वो ऐसा ही होगा। तो अगर हम भगवान शब्द यूज करें तो शुरुआत की स्थिति सभी की ऐसी होती है। तो इस दौरान अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। तो वो जो है सागर है, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के सागर और शांति के सागर हैं, 100% पॉजिटिव हैं, संतुष्ट हैं। तो मुझे उनको क्या जरूरत है जानने की, मुझे क्या करना है? अगर वो हैं तो हमें क्या करना है? वो बहुत वंडरफुल है माना, पर मुझे इनको जानने की क्या जरूरत है? तो ऐसे भी इस दुनिया में बहुत ग्रेट लोग होते हैं, तो ठीक है, तो मुझे उनको जानकर मुझे क्या मिलेगा? तो यहां पर भी हम ये पूछ सकते हैं कि मुझे क्या मिलेगा? कुछ जवाब आ रहे हैं। तो एक साइकोलॉजी में कहा जाता है कि हम जिसका साथ रखते हैं उससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये मानसिकता है मनुष्य आत्माओं की। हम जिसके साथ रहते हैं उसके प्रभाव में आते हैं कभी ना कभी। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि भगवान की जरूरत क्या है हमें, तो उसका जवाब दिया जा रहा है। तो स्कूल में भी अगर बच्चे जाते हैं तो फ्रेंड्स होते हैं, उनके प्रभाव में आते हैं बच्चे, कुछ संस्कार उनके ले लेते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे। कई बार केवल अच्छे संबंध संपर्क में कोई किसी के आ जाए तो वो उनकी जीवन बन जाती है। और तकदीर ही बदल जाती है कई बार। तो यहाँ पर भगवान है जो सागर है प्रेम के, तो अगर आप उनकी कंपनी में रहें तो चांस है कि आप भी पारसनाथ बन जाए, क्योंकि आप में भी वो पोटेंशियल है। लेकिन इस वक्त जो हमें साथ मिलता है वो सब दुनियावी नजरों से देखते हैं, यानी दे अभिमान है सभी में, तो आपको दैहिक रूप से ही देखते हैं सब। लेकिन अगर आप उनकी कंपनी में रहें, यानी कि परमात्मा की कंपनी में, तो चांस है कि आप भी पारसनाथ हो जाएं। तो इसीलिए हमें वो कंपनी की जरूरत है। तो हमें केवल उनकी कंपनी चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप से कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अगर हम किसी के बारे में पढ़ते भी हैं तो वो भी हमें प्रभावित करती है, क्योंकि वो हमारी कंपनी बन जाती है। फिर हम उनके आइडियाज फॉलो करने लग पड़ते हैं, चाहे हम मिले भी ना हो उनसे। तो हो सकता है आप किसी से केवल एक बार मिले हो और इतने प्रभावित हुए हो कि वो आपकी कंपनी बन जाती है फिर, और उसके परिणाम निकलते हैं, वो रिजल्ट निकलते हैं उस साथ के। तो यहां पर भी जब हम परमात्मा की पर्सनालिटी समझते हैं, पारसनाथ की पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, जब हम जानते हैं कि वो क्या अनुभव करते हैं, तो फिर हमको वो क्या अनुभव करते हैं वो हमें ग्रास्प करना है, यानी वो जो अनुभव कर रहे हैं उसको हमें पकड़ना है। और जैसे हम उनकी कंपनी में रहते हैं, वो उसमें शक्ति है कि आप भी सोल कॉन्शियस हो जाएं, यानी आत्म अभिमानी हो जाएं, तो उसके लिए कंपनी की जरूरत होती है। हमने देखा है कि यहाँ अंधकार की दुनिया में सब लाइन क्रॉस कर चुके हैं, अज्ञानता में हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं अपने बेअहंकार से। सारे 800 करोड़ आत्माएं, इस वक्त की जो पॉपुलेशन है, जैसे कि वो कहानी ही सब कुछ है। आप देखिए, कोई साइंटिस्ट हो, यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर्स हो, कोई ये भी नहीं जानना चाहता कि इस कहानी से परे क्या है। ऐसी आपको कंपनी मिल रही है अभी, क्योंकि सभी पूरी तरह निश्चय बुद्धि है कि ये इस कहानी ही सब कुछ है। और उस चींटी के पहाड़ में वो बड़ी चींटी बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्तित्व है, भगवान की बात हम कर रहे हैं कि वो हमको एक अलग नजरिए से देखते हैं। तो अगर हम इस अज्ञान निद्रा से जागना चाहते हैं, तो हमारे को भगवान की सोच को, यानी उनके व्यक्तित्व को पकड़ना होगा, जो हमेशा ही सोल कॉन्शियस रहते हैं। हम अपने अपनी बुद्धि के साथ खेलते हैं और इस व्यक्तित्व को पहचानते हैं और पकड़ते हैं। तो योग बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, कि हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि वो क्या जानते हैं, वो यानी परमात्मा क्या जानते हैं। हम वो महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं जो वो फील करते हैं। और हम वो सोचना चाहते हैं जैसे परमात्मा सोचते हैं। और जो आपकी चीज है वो है, हम देखना वो चाहते हैं तो हम देखें, जो वो संपूर्ण सत्य में होते हैं। तो हमें वो आइडिया को पकड़, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, क्या वो कहानी के बारे में बार बार सोचते होंगे? नहीं, तो वो क्या देखते हैं? जिसके पास पूरा नक्शा होगा वो कैसे देखेगा? तो जब हम ये सोचने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो अनुभव हमारे भीतर चलते हैं। और वो आत्मा को प्यूरिफाई करने लग जाते हैं। मन हमारा बिजी रहता है, आप कुछ यहाँ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? तो जो शेयरिंग चल रही है इस वक्त वो ये कि जो पीछे हमने देखा कि कई बच्चे अपना पुनर्जन्म याद रखते हैं, एक ऐसी सोच है जहां पर इस तरह का कुछ चल रहा है। और अभी जो जो आमतौर पर सोच है वो ये कि वो लोग जो आत्मा से रिलेटेड चीजों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भगवान का व्यक्तित्व बड़ा काम आता है, जो वो हमेशा पारस में रहते हैं। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि कौन भगवान को जान सकता है? तो कई लोग कहेंगे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, उनका अस्तित्व नहीं है। तो जो इतना डिवाइन है, लोग उसको मिस आउट कर देते हैं और उसके साथ वो डिवाइन सीक्रेट्स भी मिस कर जाते हैं जो ऐसा कहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके शहर में कोई बड़ा संगीतकार आया है तो कौन उसे पहचान सकेगा? आपके शहर में कोई म्यूजिशियन संगीतकार आया है जो बहुत अच्छा संगीत बनाता है, तो किसी का जवाब आया है कि एक और जो संगीतकार होगा वही पहचान पाएगा। और मान लीजिए कोई गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, तो अगर कोई मैथ्स जानता ही ना हो तो वो नहीं पहचान पाएगा। तो आपको खुद को एक संगीतकार होना पड़ता है अगर आप उसको पहचानना चाहें तो। तो भगवान एक सुप्रीम पर्सनालिटी है और भगवान के ऊपर कई किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन भगवान को पहचानना, अगर उनको पहचानना है तो थोड़ा बहुत आपको भी गॉडली होना पड़ेगा। तो वो पर्सनालिटी आपको अपने भीतर भी पहचाननी पड़ेगी, तब भी आप भगवान को पहचान पाएंगे और अच्छी तरह ग्रास्प कर सकेंगे वो जो खुद हैं। तो हमको उसके लिए आत्माभिमान, पर हम ये नहीं कह रहे आप परमानेंटली आत्माभिमानी हो जाएं, उसके लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप उस एक एक क्षण की स्थिति में आ सकते हैं जब आप आत्माभिमानी होते हैं। तो आप उस एक एक मिनट में प्रैक्टिस कर सकते हैं उस इनविजिबल सोल की, अदृश्य आत्मा की। तो जब हमें खुद की ग्रेटनेस पता चलेगी तो दूसरों के भी हमारे को समझ आने लगती है। हम ये भी समझ पाएंगे कि पारसनाथ की पर्सनालिटी क्या है। हमारे को बहुत ही साफ अंतर्दृष्टि मिलती है फिर कि वो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या फील करते हैं और वो क्या जानते हैं। तो जितना आप आत्माभिमानी होते हैं उतना आप उनकी पर्सनालिटी समझते हैं, जितना आप उनकी पर्सनालिटी समझते हैं उतना आप खुद सोल कॉन्शियस होने लगते हैं। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जितना हम सोल अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं उतना हम उनको जानने लगते हैं। तो जो शब्द है इम्पोर्टेंट शब्द वो है सत्यता। तो जो सत्य में रहता है वो भगवान है। किसी का सवाल है कि क्यों कोई लोग भगवान को पहचान पाते हैं और बाकी नहीं। तो अंधकार से जब हम निकलते हैं तो कभी ना कभी हमें भगवान समझ आ ही जाते हैं। हम पहचानते हैं अपना घर और अपनी फैमिली पहचानते हैं, पर ये सब होता है, पर ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है कि एक पक्षी उड़ता है, फिर दूसरा उड़ता है, फिर पूरा ही पूरा झुंड उड़ जाता है। तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। फेथ का मतलब है शक करना। नो, फेथ का मतलब है विश्वास करना। मतलब कि आपको शक है और आपको विश्वास नहीं है इस पर कि ये हमको हमारे गंतव्य तक ले जाएगा या नहीं। जिनको विश्वास है फिर भी वो अलग अलग आइडियोलॉजी में चले जाते हैं। यहाँ एक बेस बना लेना अच्छा है, वो आपको क्लैरिटी देगा। मगर क्लियर होना चाहिए, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही आपके बेस को स्ट्रांग बनाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए के बारे में। पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, हमने यहाँ पर फेथ की बात नहीं की है। यहाँ फेथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर तो उसमें आपको सक्सेस के लिए आपको फेथ होना जरूरी है, वही आपको सफलता दिलाता है। और ये शुरुआत होती है किसी एक तरह से की भावना से। हम कैसे इसको रिएक्ट करें कि जब हमारे आसपास के लोग हर बात के लिए भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। ये हर किसी की अपनी संभावना है कि वो कैसे भगवान में विश्वास रखते हैं। और यहाँ पर आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते उनको विश्वास दिलाने के लिए। मर्सी के तरीके से देखें तो
आप उनको क्लैरिटी दे सकते हैं कि वो जिस परिस्थिति में वो क्यों है। और हर इंसान अलग अलग होता है, उनके अपनी अपनी तरीके होते हैं, ये क्लैरिटी उनको कैसे मिलती है ये हर किसी की अपनी समझ पर डिपेंड करता है। पे के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि ये विश्वास की बात है, किसने कहा कि इसमें आर्गुमेंट नहीं होते हैं, कहा ये कॉन्फिडेंस की तरह है, किसी ने कहा ये जानकारी रखना होता है। हर किसी के फेथ के लिए अलग अलग तरह की समझ है। कि जिनका दिमाग नहीं चलता है या जिनकी मेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो वो लोग कैसे भगवान को अनुभव कर सकते हैं? कुछ ऐसा होता है कि ये लोग ब्रेन को इस्तेमाल किए बिना भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि दिल से कुछ बातों को समझ जाते हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने ये सब होते हुए देखा है। इसमें कुछ एक और मैं चीज जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमने यहाँ भगवान के विषय में बात की है। यहाँ पर एक इंसान है जो सत्य में है, सत्य सुंदर है, और ये बिल्कुल इसमें किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा होता है। अगर जैसे कोई आपको प्यार करता है, मगर आप ये नहीं चाहोगे कि वो आपकी फोटो लगा के और आपकी पूजा करने लगे, आप चाहेंगे कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और मैं अपनी जिंदगी में। अगर आपका मित्र आपको सच में पसंद करता है, तो आप उसके लिए अच्छी विशेष करेंगे, वो आपके लिए अच्छी विशेष करेगा। और यहाँ पर आप देखें, एक बीइंग है जो कि प्यार का है, प्रेममयी है, और अगर वो आपके लिए कुछ दुआ करता है और चाहता है आपसे कुछ, या लोगों से आपके लिए कुछ कहता है, तो मतलब कि ये सुप्रीम श्रेष्ठ बीइंग नहीं है। मगर अगर वो सही चीजें करता है, सब कुछ अच्छी तरह से करता है, तब आप उसको अच्छा कहते हैं। ये कि वो रावण के माया के कंफ्यूजन में नहीं है। और आप अगर ऐसा बिहेव करते हैं, तो आपका कोई भी आपसे खुश होगा, कोई भी आपका मित्र। ये स्थूल स्थूल वतन में देखते हैं कोई कि वो अगर कोई आपका मित्र है जो अल्कोहल नहीं लेता है, तो उससे सब खुश होंगे, उसके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, आप भी। एंशिएंट वर्ल्ड में एक वर्ड यूज किया जाता था, मित्र की दोस्त, और भगवान के लिए भी यही शब्द यूज किया जाता है कि गॉड इज मित्र, कि वो वो ईगो का अहंकार का दोस्त नहीं है, वो आत्मा का दोस्त है, सोल का। और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये सोल जो है, आत्मा जो है, वो चैतन्य हो जाए, बेहोशी में ना पड़ी रहे। और आप जाग जाते हैं, आप जा देखते हैं कि आपका संसार कितना अच्छा है। ये अजर अमर अविनाशी संसार है और यहाँ भगवान आपको प्यार करते हैं, आपके उनके साथ एक अविनाशी संबंध है, आप एक परिवार की तरह हैं भगवान के साथ, एक सत्य परिवार, अविनाशी परिवार। और यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि कहानी के हैं और ये स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, मगर ये जो सत्य संसार है उसमें सत्य परिवार है और इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि दुख देने वाला हो, यहाँ पर कोई डीमंस नहीं होते, दुष्ट नहीं होते। और यहाँ पर हर किसी की कुदरती अवस्था इतनी अच्छी होती है कि ये खुशी से भरा हुआ संसार है, प्यार ही प्यार है। और यहाँ आप पूर्ण रूप से खुश होते हैं, यहाँ आप भगवान का नाम लें, उसकी बात करें या नहीं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई इस बारे में कुछ बुरा माने या अच्छा माने। यहाँ पर आप यहाँ पर रावण राज्य से परे हैं और आप खुश हैं एक अच्छे तरीके से, और यही आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर, बहुत अच्छी खबर है। और भगवान का प्यार आपके लिए रहेगा, हमेशा रहेगा। राम जो है वो सीता को प्यार करते हैं और राम तब खुश होते हैं जब सीता जो है वो रावण के राज्य से पार होती है, उससे बाहर निकल आती है। और जैसे जैसे आप रावण के राज्य से बाहर आते हैं उतना ही आप चैतन्य होते चले जाते हैं और आप इस रिचनेस को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको उनका साथ अच्छा लगता है जो कि बहुत फेमस होते हैं, सेलिब्रिटीज के साथ, जो बहुत बुद्धिमान है उनके साथ रहना अच्छा लगता है। और ये भी कि जो पवित्र होते हैं उनके साथ भी होली होते हैं। और कुछ लोगों को अच्छा लगता है अमीर लोगों के साथ रहना, आपको कैसा अच्छा लगता है, क्या अमीर लोगों के साथ? किसी ने कहा कि जिसका दिल और दिमाग रिच हो, प्रशांत भाई कह रहे हैं नहीं, कहानी की रिचनेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अविनाशी खजानों की बात हो रही है, जो अविनाशी खजानों में रिचेस्ट है। कि अगर भगवान मुझसे खुश होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? प्रशांत भाई कह रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छा होगा, इसका मतलब है कि आप रावण के राज्य से बाहर हैं, आप उसके कैंप से बाहर आ गए हैं। और यहाँ पर गॉड जो है एक कोच की तरह हैं, आपको वो रास्ता दिखाते हैं, आपको ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे रावण के कैंप से आप बाहर आए। और अगर वो आपसे खुश है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और कोच हमेशा सिग्नल देते हैं, तो ये सिग्नल है कि आप रावण के कैंप से बाहर आ रहे हैं। सकाश कैसे काम करता है, कि जब हम भगवान को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, जैसे कि एक मैग्नेट होता है, उसका एक फील्ड होता है, चाहे उसके आसपास कुछ चीजें हैं हो तब भी और ना हो तब भी, उसका ये फील्ड तो रहता ही है, फील्ड हमेशा रहेगा। और यहाँ पर ये फील्ड जो है अपने आसपास की चीजों सराउंडिंग्स के ऊपर असर डालता है। अगर आपको ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से पता है आपके माइंड में कि कि ये सनातन सत्य है, पारस का इस्तेमाल करके आप कह सकते हैं कि भगवान के फेथ के लिए, तो आपका एक फील्ड बन जाता है और बिना कुछ कहे हुए ये फील्ड आपके आसपास बना ही रहता है, एक ऑरा जैसे बन जाता है, जैसे भी कॉन्शियसनेस हो वैसा ही फील्ड बन जाता है। और ये अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस आकाश से बनता है। यहां तक कि जब हम देह अभिमानी होते तब भी एक ऑरा बनता है, जिस तरह की वाइब्रेशंस आपके अंदर होती है वैसा ही ऑरा बन जाता है। आप कुछ शब्द बोलते हैं तो क्या ये 800 करोड़ लोग क्या इसको सुन पाते हैं या समझ पाते हैं? नहीं, मगर जब आपका फील्ड बन जाता है तब ये आसान हो जाता है और लोगों को समझने में। हैप्पीनेस जैसे कि आसपास के लोगों पर प्रभाव डालती है, तो ये कितनी मीठी सी फीलिंग होती है, कैसी अच्छी भावना होती है। क्वेश्चन है कि भगवान हमसे कैसे खुश होते हैं, बिल्कुल अलग ही विषय है, अभी हम इसको नहीं लेंगे, मगर कभी दोबारा जब सेशंस होंगे तो उसमें हम इसको लेंगे। तो अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है कि भगवान आपसे खुश हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको डिटेल में हम बाद में लेंगे। तो अभी हम रूम ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन रूम के लिए है, आप उसके रहने से क्या फायदा उठा सकते हैं? चैट बॉक्स में मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूं। दस मिनट के लिए हम रूम्स में चलते हैं। गीता दीदी का स्वागत करते हैं, वो अपना शेयर करेंगी कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर, और बहुत अच्छी चर्चा चली रूम में भी। उन्होंने किसी से बात करी इस रिट्रीट के बारे में और वो बहुत खुश हुई। उन्होंने अपना समय निकाला है इस रिट्रीट के लिए। आज का जो विषय था सुप्रीम श्रेष्ठ के लिए, श्रेष्ठ आत्मा गॉड भगवान के बारे में, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे किताया का कहना है कि वो कि अपने साथ में जो भी कोई है उसकी उसके साथ से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो हम किसकी कंपनी में है उसके बारे में हम ध्यान दें, वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कंपनी, सबसे ऊंच से ऊंच कंपनी है गॉड की। हम आप जानते हैं कि ये सुप्रीम सोल, श्रेष्ठतम आत्मा, हमारे माँ बाप हैं, हमारा सब कुछ वही है। तो उनसे साथ, उनके साथ रहने से हमको बहुत फायदे होते हैं। ये कि हमारे अंदर जो फरिश्ता है उसको ऐसा भोजन मिलता है कि हम भी श्रेष्ठतम भगवान की तरह बनते जाएं। तो उसके लिए रोशनी, ज्ञान की रोशनी होना बहुत जरूरी है। वही हमको ये क्लैरिटी देता है कि ये श्रेष्ठतम आत्मा कौन है और उनसे हमारा क्या संबंध है। और ये क्लैरिटी आना ही हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। इस रिट्रीट को ज्वाइन करना और उससे सीखना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। इस एनालॉजी को लेते हैं, जैसे कि कार कैसे कि एक कार ड्राइवर कार को चला रहा है, कि वो कैसे उस कार को हैंडल करता है। ऐसे ही हम भी हम कुछ ना कुछ सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे हैं और उसको किस तरह से अच्छे से हैंडल करना है, यही अब यहाँ सीखना है। और हम श्योर होना चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर सही दिशा में जा रहे हैं। और इस सब को प्रैक्टिकल में करना और अनुभव में लाना, यही हमारे अंदर हमें अनुभव की अथॉरिटी बनाता है। और यही ये मेडिटेशन के एक क्षण जो हम कुछ समय के लिए बनाते हैं, वही हमको अनुभव देते हैं। इन अदृश्य यात्री और उसके फंक्शंस और उसके थिंकिंग के बारे में हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो हम प्रशांत भाई से पूछते हैं। गीता बहन का धन्यवाद। कुछ क्षण हम ध्यान के बनाते हैं जहां जहां हम श्रेष्ठतम चेतना में अपने आप को लाते हैं, ये अदृश्य यात्री। और ये अदृश्य यात्री की चेतना ही श्रेष्ठतम चेतना है। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, श्रेष्ठतम बुद्धि का। उसके सामने पूरा का पूरा मापचित्र है। वो अपने अमर होने की अवस्था को भी जानता है, वो जानता है कि वो संपूर्ण है, कंप्लीट है। यहाँ पर वो एक कहानी में खेल खेल रहा है, मगर वो इससे बिल्कुल स्वतंत्र है, आजाद है। और जो कोई भी इस कहानी से स्वतंत्र है, वो उस कहानी को कहानी की तरह लेता है। और वो जानता है कि ये रावण जीरो है, तो मतलब कि वो श्रेष्ठतम चेतना में है। ये रावण अंधकार में बड़ा होता है। अदृश्य यात्री ये जानता है अपने सत्य संसार को। जैसे कि यहाँ प्रशांत भाई बात कर रहे हैं, बट प्रशांत भाई उस स्थूल पतन की दुनिया में, कहानी में है, वो जानते हैं कि मैं इस कहानी से बिल्कुल आजाद हूं, इससे अलग। ये अदृश्य यात्री अपनी एग्जिस्टेंस को अच्छी तरह से जानता है और इस श्रेष्ठतम चेतना में उसको सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। इसीलिए ये श्रेष्ठतम चेतना की कंपनी जो है वो हमारा दोस्त है, वो दिव्य है, राजाई है, उन्हीं का साथ है मेरा और उनका घर ही मेरा घर है। और ये एक बहुत बड़ी गुप्त बात है, आपने इस श्रेष्ठतम चेतना को ही पकड़ना है, उन्हीं के साथ रहना है हर स्तर पर, यहां तक कि ड्रामा में भी, इस कहानी में भी उन्हीं का साथ रखना है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा पर चलते जाते हैं, हम याद रखते हैं कि हमारे सामने क्या ऑप्शंस हैं, क्या विकल्प हैं। हम उस सुंदर सत्य को जानते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा जो आज के विषय के बारे में है। मुझे ये पसंद है, किसी ने डिस्क्राइब किया, जी ड्राइव में मैं ये दे रहा हूं जो आप पढ़ सकते हैं। भगवान के लिए एक शब्द यूज होता है किसी किसी कल्चर में, किसी संस्कृति में, शंभो जिसे कहा जाता है। शून्य मतलब जीरो। भगवान के लिए हर संस्कृति में अलग अलग, हर कल्चर में अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। भगवान के लिए जीरो शब्द यूज करना अच्छा है, और जो बहुत समझदार है वो जीरो ही होता है, वो कहानी से बिल्कुल जीरो है। जैसे कि एक अभिनेता राजा का रोल कर रहा है और वो जानता है कि वो राजा तो नहीं है, तो वो समझदार है। और जो इससे जुड़ा हुआ है, इस कहानी से जुड़ा हुआ है, ये जो ड्रामा में चल रही है, और वो जो इससे प्रभाव मुक्त रहता है पूर्ण रूप से, तब आप सबसे ज्यादा समझदार हैं, वाइजेस्ट हैं। और इसी स्तर पर ये गेम चल रही है, खेल चल रहा है। और यहाँ पर हम सबके सब हरा दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम माइंड माइंड की ही बात करते हैं, हम हर बात में मैं और मेरा यूज करते हैं। जैसे कि मैं स्टोरी में राजा हूं, मगर ये श्रेष्ठ दोस्त है, ये हमेशा जीरो रहता है, इसका कुछ भी अपना नहीं है और वो कुछ लेना भी नहीं चाहता यहां से, और उसको कुछ और चाहिए भी नहीं, उसका कुछ खो भी नहीं सकता। और अपने व्यक्तित्व को इनमें से किसी चीज पर निर्भर नहीं होने देता, तो वो जीरो ही तो रहता है। आप किसी और से इसको कंपेयर करके देखें, और यहां इस दुनिया में स्थूल वतन पर कोई भी जीरो नहीं रहना चाहता, हर कोई हीरो बनना चाहता है। ऐसा कौन है जो हर किसी को देवता बनाता है, फरिश्ता बनाता है, और वो उसके लिए क्रेडिट भी नहीं लेता, वो ये नहीं कहता कि मैंने बनाया है। वो सदा डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा रहता है, वो सब देखता है मगर हमेशा जीरो रहता है। अगर आपको अपने सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल चाहिए, रोल मॉडल मॉडल चाहिए, तो इन्हें ही देखना होगा। मैथमेटिशियन से गेम खेलते हैं जिसमें जीरो को वो नथिंग कहते हैं। आप देखेंगे जीरो को तो कुछ नहीं, मगर जीरो में से देखेंगे तो बहुत कुछ है। आज जब जीरो को देखते हैं तो आपको कुछ भी चाहिए नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपका कुछ अपना नहीं है, तो ये है जीरो, नथिंग। और वो श्रेष्ठतम चेतना वो सागर है, हर चीज का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, और यहां विश्वास की बात नहीं है, यहां पर गॉड कहना, भगवान कहना, ये शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, मगर हम जानते हैं कि ये एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व है और उनकी कंपनी श्रेष्ठतम है, और यही आपको अनुभव देते हैं, उनके साथ रहने से ही अनुभव आते हैं। और जब आप उनके साथ रहते हैं, आप इस स्पाइरल में, कुंडली में ऊपर की तरफ आते चले जाते हैं, ऊंच से ऊंच चढ़ते जाते हैं, और ये अभी हो सकता है, आज हो सकता है, और आज ही आप अनुभव कर सकते हैं उनके साथ रहने से। और यहाँ पर ज्यादातर लोगों को रावण के ही अनुभव हैं, मगर राम के अनुभव अलौकिक हैं। अगर आप रावण का साथ, उस जहर को छोड़ देते हैं, तो आप और जीरो में आ जाते हैं, तब आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ हम हमारे पास कुछ ही मिनट्स हैं किसी प्रश्न के लिए, किसी का कुछ हो, या फिर हम कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहेंगे। एक प्रश्न था कि अगर हम भगवान के कंपनी में रहते हैं और उसके घर जाते हैं, या यहाँ पर स्थूल वतन पर उसकी कंपनी में है, तो क्या फर्क है? मगर यहाँ पर हमें ये चांस मिला है संगम युग पर कि हम उसके साथ को अनुभव कर पाए। जैसे हम कहें कि या क्रिकेटर कोई आपका फ्रेंड है, तो अच्छा लगता है उसके साथ रहना, जब आप स्टेडियम में उसे खेलते हुए देखते हैं तब आप जानते हैं कि वो बैट्समैन है, उसके बारे में डिटेल में जान पाते हैं। ऐसे ही अभी इस समय पर हमारे पास ये चांस है कि हम अनुभव कर पाए अपने आप को और उस श्रेष्ठतम चेतना को, मगर डिटेल्स हमें सब कुछ हमें वहां उसके घर में ही पता चलता है और हम हमको बहुत वंडर होता है ये सब जानकर। धन्यवाद। ब्रेन में जो फंक्शंस हैं क्या वो आत्मा में भी होते हैं? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं ऐसे जितने भी बातें हैं कॉग्निटिव वो सब के सब आत्मा है, आत्मा में ही होते हैं। ब्रेन को एक कंप्यूटर की तरह यूज किया जाता है। हमको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमको सोल से ही लेनी होती है, ये सब सोल के अंदर होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर की डिस्क यूज कर रहे हैं, तो ऐसे ही सोल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। क्या हम फिजिकल ब्रेन जो है बुद्धि को हम किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं? और यही ब्रेन जो है प्रशांत भाई कह रहे हैं कि आत्मा में से ये इंफॉर्मेशन निकालने में ही ये ब्रेन हेल्प करता है। आपके अपने अनुभव से आप बता सकते हैं कि हम कर्म योगी कैसे बन सकते हैं, उसकी कोई युक्ति बताएं। प्रशांत भाई कह रहे हैं कि कर्म तो चलता ही रहता है, यहाँ पर सिर्फ अटेंशन देना है कि हम अदृश्य खिलाड़ी हैं मगर चेतना में रहना, उस चेतना में रहना है और आपके अंदर उमंग उत्साह होना चाहिए, अपने पारस को मजबूत करना है और वो ध्यान के क्षण बनाते ही रहना है, एक एक मिनट के, वही आपके अंदर आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे और आपको ऊपर ले जाएंगे और आप पाएंगे कि ऐसे अनुभव आपने पहले कभी नहीं किए और ये धीरे धीरे बहुत आसान होता चला जाएगा, कुदरती होता चला जाएगा कि आप उस आत्मिक स्मृति में रहते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रशांत भाई कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है कि हम सब मिलते रहते हैं और बहुत कुछ सीखते रहते हैं एक दूसरे से, ये वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों के बाद हम फिर से मिलेंगे। आप अपने अनुभव के क्षण बनाते रहें ताकि वो आपको याद दिलाते रहे ये सब, और ये आपको फायदा भी करेंगे, जैसे कि आपको एक इनाम मिल रहा हो ये सब करने का, और ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद इसको इंफॉर्मेशन ही मत रखिए, इसको अनुभव मिलाइए। और ये इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है वो आपका गंतव्य नहीं है, आपको अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अनुभव के क्षण बनाने हैं। धन्यवाद। जो कोई भी आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लोहार जो हैं उनके लिए उनको इनवाइट कर रही हैं सारा बेन कि वो कुछ बोले बताएं कि आपने क्या यहाँ से उठाया। प्रशांत भाई लोहार भाई कह रहे हैं कि अगर हम ये सारा का सारा रिट्रीट को टाइप कर लें, ये सब हर किसी को फायदा करेगा क्योंकि ये बहुत अच्छी रिट्रीट है। अगर ये बुक फॉर्म में या किसी नोटबुक के फॉर्म में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा कि अगर ये पूरे संसार में हम इसको सबको फैला सकें और सब लोग इसका फायदा उठाएं। और बाबा ने भी कहा है हर किसी को ये बताना है, तो बाबा के कहने के अनुसार हमको ये पूरी दुनिया को इसका रिट्रीट का जो फायदा देना होगा। अभी जो आगे सेशन आने वाले हैं उनके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ईमेल में भी आपको मिल जाएगा जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ, वेबसाइट भी है, वहां से आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू प्रशांत भाई।